नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि संबंधित कंपनियां नई प्रौद्योगिकी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि सरकार नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर रही है। क्रिसिल इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव 2023 को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि इस्पात और सीमेंट उद्योग की बड़ी कंपनियां कीमतें बढ़ाने के लिए गुटबंदी कर रही हैं। उन्होंने कहा, इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग जब भी उन्हें मौका मिलता है वे गुट बनाते हैं और कीमतें बढ़ा देते हैं। अपने स्पष्ट विचारों के लिए पहचाने जाने वाले गडकरी ने कहा, NHAI के लिए DPR तैयार करना एक बड़ी समस्या है। किसी भी परियोजना में कहीं भी कोई सटीक DPR नहीं है। टाटा मेटालिक्स लिमिटेड का 30 सितंबर 2023 को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 3 गुना होकर 44.16 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजारों को ये जानकारी दी। एक साल पहले जुलाई सितंबर में कंपनी ने 14.29 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। कंपनी ने बताया कि खर्च घटने से उसका मुनाफा बढ़ा है। समीक्षाधीन अवधि में टाटा मेटालिक्स की कुल आय सालाना आधार पर 881.77 करोड़ रुपए से घटकर 758.05 करोड़ रुपए रह गई। जुलाई सितंबर 2023 में कंपनी का खर्च सालाना आधार पर 861.64 करोड़ रुपए से घटकर 696.41 करोड़ रुपए रह गया। जोमैटो के प्रबंध निदेशक एवं CEO दीपेंद्र गोयल ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि कंपनी का सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिख रही उस महिला से कोई लेना देना नहीं है जो उसके डिलीवरी भागीदार की तरह कपड़े पहनकर बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाती नजर आ रही है। वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है। गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, हमारे से कोई लेना देना नहीं है, हम बिना हेलमेट बाइक चलाने का समर्थन नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास कोई इंदौर मार्केटिंग हेड नहीं है। वह एक्स पर उस पोस्ट का जवाब दे रहे थे जिसमें महिला का वीडियो साझा करते हुए जोमैटो को टैग किया गया था। इस वीडियो में जोमैटो के डिलीवरी भागीदार की तरह तैयार होकर एक महिला कंपनी का डिलीवरी बैग लिए बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाती नजर आ रही है। बाजार फाइनेंस 267.50 करोड़ रुपए में पेनांट टेक्नोलॉजीज में 26% हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बना रही है। कंपनी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की शाखा बजाज फाइनेंस ने कहा कि कंपनी ने 16 अक्टूबर 2023 को पेनांट टेक्नोलॉजीज में 26% तक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए पक्का करार किया। बजाज फाइनेंस ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि इस रणनीतिक निवेश का मकसद कंपनी की प्रौद्योगिकी रूपरेखा को मजबूत करना है। अधिग्रहण के 30 दिसंबर 2023 तक पूरा होने की संभावना है। निजी क्षेत्र के करूर वैश्य बैंक का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 378.45 करोड़ रुपए रहा। तमिलनाडु स्थित बैंक का पिछले वर्ष की समान तिमाही में शुद्ध मुनाफा 250.23 करोड़ रुपए रहा था। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में बैंक का शुद्ध मुनाफा 737 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष समान अवधि में यह 489 करोड़ रुपए रहा था। समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन आय बढ़कर 2,335.97 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले समान अवधि में 1,821.05 करोड़ रुपए थी। बैंक ने एक बयान में कहा कि इस अवधि में बैंक का कुल कारोबार 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। बैंक के प्रबंध निदेशक एवं CEO रमेश बाबू बी ने कहा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा बैंक पिछली तिमाही में 1,50,000 करोड़ के कुल कारोबार के ऐतिहासिक पड़ाव को पार कर गया और 1,53,516 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। विश्व व्यापार संगठन की बैठक में अमेरिका, चीन, कोरिया और चीनी ताइपे ने लैपटॉप तथा कंप्यूटर पर आयात संबंधी अंकुश लगाने के भारत के फैसले पर चिंता जाहिर की। WTO की बाजार पहुंच समिति के बैठक में ये चिंता जाहिर की गई। इसकी अध्यक्षता 16 अक्टूबर को जिनेवा के पैराग्वे में रेनाटा क्रिसाल्डो ने की थी। जिनेवा स्थित एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका ने कहा कि इस फैसले के लागू होने के बाद इन उत्पादों के व्यापार पर असर पड़ेगा, जिसमें भारत में अमेरिकी निर्यात भी शामिल है। अमेरिका ने ये कहा कि ये फैसला निर्यातकों और डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ताओं के लिए अनिश्चितता उत्पन्न कर रहा है। सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट व अन्य PC उत्पादों के आयात के लिए लाइसेंस को अनिवार्य करने का आदेश जारी किया। ये कदम विदेशी उपकरणों में हार्डवेयर में सुरक्षा संबंधी खामियां होने के अलावा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के मकसद से भी उठाया गया है। सॉफ्टबैंक समर्थित ऑनलाइन विक्रेता मीशो ने सोमवार को कहा कि हाल ही में संपन्न 10 दिन की त्योहारी सेल के दौरान 120 करोड़ ग्राहक उसके मंच पर पहुंचे। मीशो ने पहली बार कोई त्योहारी बिक्री सेल आयोजित की थी। इस दौरान कंपनी ने सामान्य दिनों की तुलना में कारोबार में तिगुनी वृद्धि करने का दावा किया। कंपनी ने बयान में कहा, मीशो मेगा ब्लॉकबस्टर सेल के दौरान 120 करोड़ ग्राहक विभिन्न उत्पादों को देखने एवं खरीदने के लिए पहुंचे। इस दौरान 1.6 करोड़ नए ग्राहकों ने उसके ऐप को भी अपने फोन में इंस्टॉल किया। इस त्योहारी सेल में 14 लाख विक्रेताओं ने 30 श्रेणियों में करीब 12 करोड़ उत्पादों की पेशकश की। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।